ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। सरकार ने आज से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के तहत शोध पत्रों, जर्नलों और शैक्षिक सामग्री सहित व्यापक डिजिटल ज्ञान संसाधनों तक निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराना है। इस योजना से अलग अलग जगह सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होगी और ज्ञान सबको सुलभ होगा। विश्वविद्यालयों और IIT सहित सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों के 1,80,00,000 विद्यार्थियों को इस पहल के अंग के रूप में दुनिया भर के शीर्ष जर्नल में प्रकाशित शोध पत्रों को देखने की सुविधा होगी। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा कि इस पहल के पहले चरण के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियंत्रिकी, मेडिसिन, गणित, प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान और मानव विज्ञान से संबंधित 13,400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों के शोधार्थियों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। ONOS योजना के तहत 3 वर्ष की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया गया है। भारत का अवसंरचना उत्पादन नवंबर में उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अवसंरचना उत्पादन का देश के औद्योगिक उत्पादन में योगदान लगभग 40% है। नवंबर के दौरान 8 प्रमुख क्षेत्रों में से 6 में वृद्धि के कारण ये उपलब्धि हासिल हुई। सीमेंट, कोयले, इस्पात, विद्युत रिफाइनरी उत्पादों और उर्वरक के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार नवंबर में 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक 4.3% रहा। ये अक्टूबर की तुलना में 3.7% अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में मौजूदा और भावी सुधारों को प्रोत्साहन देने के लिए 2025 के सुधारों का वर्ष घोषित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल रक्षा मंत्रालय के सभी सचिवों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में रक्षा क्षेत्र के प्रमुख योजनाओं, परियोजनाओं और सुधारों की प्रगति की समीक्षा की गई। भारत पारंपरिक हर्षोल्लास और धार्मिक भावना के साथ नए वर्ष 2025 का स्वागत कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने नागरिकों से उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नव वर्ष को देश की गणतंत्र यात्रा में महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने उल्लेख किया कि यह वर्ष हमारे संविधान की शताब्दी के अंतिम तिमाही में प्रवेश का प्रतीक है। नए साल में नागरिकों के शानदार स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई कि यह साल सभी के जीवन में नए अवसर, सफलता और अनंत खुशियां लाएगा। जम्मू कश्मीर में 9 जून को रियासी के शिवखोरी तीर्थस्थल पर आतंकी हमले और लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों के बावजूद पिछले वर्ष लगभग 94,80,000 तीर्थयात्रियों ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले वर्ष 2023 के 95,22,000 तीर्थयात्रियों की तुलना में 2024 में सिर्फ 42,000 कम तीर्थयात्रियों ने माता के दर्शन किए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग ने कहा कि पिछले वर्ष के अंतिम दिन कल बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे। रूस में आज से नया पर्यटक कर लागू हो गया। रिजॉर्ट शुल्क के स्थान पर देशभर में पर्यटक कर लगाया गया है। समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती के अनुसार होटलों और अन्य स्थानों पर ठहरने वाले यात्रियों को ठहरने की लागत का 1% अतिरिक्त कर देना होगा। क्षेत्रीय पर्यटन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए ये कर लगाया गया है। देश के उत्तरी क्षेत्र में घने कोहरे के कारण अनेक रेलगाड़ियों के आवागमन पर असर पड़ा है। भारतीय रेल के अनुसार दिल्ली आने वाली 22 रेलगाड़ियां 2 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। इनमें अयोध्या एक्सप्रेस, पातालकोट एक्सप्रेस, कैफियत एक्सप्रेस, तेलंगाना एक्सप्रेस और पद्मावती एक्सप्रेस शामिल हैं। यात्रियों को स्टेशन पर जाने से पहले रेलगाड़ियों की नवीनतम स्थिति जांचने का परामर्श जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शीत लहर का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन के दौरान रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।